ज्यादा समय न लेकर, क्योंकि हम लेट हैं, महाराज के मुखारविंद से और भगवान की कथा का श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण।
अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वैशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। महाबदन्नाय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। यं जं प्रभजन्ते अनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरयाजुहाय पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोष भक्त्या विहीनापराधलक्षे क्षिप्त्वाश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयीं त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणा।
मैं सबसे पहले अपने परमाराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद श्रीमद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के चरण में कोटि कोटि अपना दंडवत प्रणति ज्ञापन करता हूं, जिन्होंने भक्तिवेदांत स्वामी अर्थात आप लोगों के प्रभुपाद जी को संन्यास दिया था मथुरा में। और मैं अपने शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी को भी उसी तरह से कोटि कोटि बार उनके चरणों में दंडवत प्रणति ज्ञापन करता हूं। शायद आप लोग जानते होंगे कि 1946 से ही हमारा संपर्क स्वामी जी से था। हमारे पास में ही आकर के वो घर छोड़ करके हमारे पास रहे, वहीं उन्होंने संन्यास लिया और मैंने उनकी सारी पुस्तकें और सारी कुछ मृदंग खोल करताल, यहां तक कि विग्रहों को भी मैं भारत से उनके पास में पहुंचाया। अंतिम समय में उन्होंने मुझे आदेश दिया कि आप हमारे यदि कुछ त्रुटि हो तो क्षमा करेंगे और हमारी अंतिम समाधि आप ही के हाथों से होनी चाहिए। और मैंने अपने हाथों से ही वैदिक रीति के अनुसार में उनको समाधि भी दी। उनका अंतिम विरह महोत्सव भी वहां पर मनाया गया हमारे ही सुपरविजन में। उन्होंने मुझे ये कहा था कि हमारे बच्चों को आप सहायता भी देंगे, उनको शिक्षा भी देंगे। हमको उन्होंने अपने समय में अपने साथ में अमेरिका इत्यादि प्रचार में हमको साथ में लाना भी चाहते थे, किंतु मैं अपने गुरुजी की सेवा में उस समय संलग्न था, इसलिए कुछ देर हुई आने में। मैं तो ये समझता था कि मैं यदि लॉस एंजल जाऊंगा तो आप लोगों की छत्र छाया में दो चार दिन यहां पर रह जाऊंगा, किंतु किसी कारण से ये संभव नहीं हुआ। किंतु आप जब मैं फिर आऊंगा अंततः चार पांच दिन के लिए एक अतिथि के रूप में भी आप लोग हमें रख सकते हैं। भारतवर्ष एक अतिथि प्रधान देश है, अतिथि देवो भव। इसलिए यदि कोई भारत का अतिथि भी आ जाता है तो उसको रखने में कोई भी हर्ज नहीं है। और मैं आप लोगों से, प्रवासी हमारे अपने भाई हैं, हम लोग अपने एक फैमिली के हैं, एक वैदिक कल्चर के हैं, इसलिए हमको आप लोगों के निकट में रहने में भी प्रसन्नता होगी। मैं अधिक समय न लेकर के मैं फिर अपना वक्तव्य मैं आरंभ करता हूं कि हमारे ब्रह्मा से लेकर के नारद से लेकर अब तक स्वामी जी तक हमारे गुरु देवता को। भक्ति का प्रचार करना ही जीवन का उद्देश्य था। हम लोग भूल करके, भगवान को भूल करके इस जगत में कोटि कोटि जन्मों से, एक दो जन्मों से ही नहीं, कोटि कोटि जन्मों से, कभी मनुष्य, कभी पशु, कभी पक्षी, कभी देवता, कभी गंधर्व, कभी राजा, कभी प्रजा, कभी दरिद्र, कभी चींटी, कभी पशु इत्यादि के जन्म में घूम रहे हैं सुख के लिए। किंतु हम लोग अभी तक सुख से प्रसन्न नहीं हो, संतुष्ट नहीं हो सके। न जाने फिर न जाने कौन सी जोनी मिले, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए व्यास जी ने नारद जी की कृपा से, अपने गुरु जी की कृपा से श्रीमद भागवत संहिता का अपने समाधि में दर्शन किया और जीवों के कल्याण के लिए इसको अक्षरात्मक रूप में, अक्षर ब्रह्म के रूप में इसका संपादन करके जगत में इसको प्रकाशित किया। तब से जगत में इसका प्रचार चल रहा है। चैतन्य महाप्रभु जी ने इसे प्रमाणिक माना और अपने जीवन में इसका आचरण किया। हम उसमें से दो एक बातें आप लोगों को मैं इसमें से बतलाऊंगा। सबसे पहले ये निश्चित धारणा रखेंगे कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ द गॉडहेड है। और जितने भी भगवान के अवतार निकले हैं ये सब कृष्ण से ही हैं, इसमें कोई शंका मत करेंगे। क्योंकि व्यास जी, नारद जी, पराशर जी, परीक्षित महाराज, स्वयं चैतन्य महाप्रभु इत्यादि कह रहे हैं कृष्णस्तु भगवान स्वयं। और उस भगवान को पाने के लिए, नित्य सुखी होने के लिए एकमात्र भगवत भक्ति ही पथ है, दूसरा कोई पथ नहीं है। और वो भक्ति कैसे आएगी, एकमात्र पथ है संतों का सत्संग, बिनु सत्संग न पाव ही प्राणी। बिना भगवत भक्तों के, जो हम लोगों से ऊपर स्टेज के हैं, जिनको अनुभूति नहीं है, जैसे स्वामी जी यहां एकले आकर के सारे विश्व में भक्ति का प्रचार किया, वो यदि कृपा करके न आते, कृष्ण और या चैतन्य महाप्रभु उनको नहीं भेजते, प्रेरणा नहीं देते, नहीं आते। आज सारे विश्व में जो भक्ति का प्रचार हो रहा है, सभी लोग नाम संकीर्तन कर रहे हैं, ये संभव पर नहीं था। इसलिए साधु संग, साधु संग, साधु संग, लौ मात्र साधु संगे सर्वसिद्धि है। साधुओं के संग से मनुष्य का, हाथी, सिंह, भालू, पशु, पक्षी, कीट, गंधर्व, राक्षस, राक्षसों में विभीषण जैसे लोग हनुमान जी की कृपा से कैसे बन गए, बंदरों में सुग्रीव, ये सब साधु संगों का फल है। अरे सबरी जैसी एक भिलनी, कुछ भी नहीं जानने वाली, और भगवान को वशीभूत कर लिया, सत्संग का प्रभाव था। इसलिए बिनु सत्संग न पाव ही प्राणी, यह भगवत भक्ति संसार में बहुत रेयर है, किंतु सत्संग के द्वारा इसको पाया जा सकता है। कैसे पाया जा सकता है, यदि महाभागवतों के मुख से, सुखदेव गोस्वामी जैसे लोगों से, जिनको संसार की कोई भी तमन्ना नहीं है, कोई डिजायर नहीं है, वो समझ चुके हैं कि संसार क्या है, छायाबाजी की तरह। छायाबाजी माने जैसे रात में छोड़ते हैं ना आकाश में गुब्बारे टब्बर्रे, और एक मिनट में फिर धंस हो जाते हैं, संसार का सुख ऐसा ही है। संसार भर में आपने मनुष्य जीवन में सैकड़ों वर्षों में, 100 वर्ष की आयु में आपने जो कुछ कमाया, अंत में सबको छोड़ छाड़ करके जाना होगा। एक कपड़क या शरीर, एक ये भी नहीं लेकर के जाना है, इस चीज को समझना है। यदि भगवान का भजन किया तो ये आपके साथ में जा करके आपको कुछ कंसेशन दिला देगा, या भगवान की सेवा में नियुक्त कर सकता है। इसलिए भगवान की जितनी भी चीजें हैं उसमें सत्संग में हरि कथा, भागवत की कथा होनी चाहिए। सतांग प्रसंग मम वृज संविदौ पवन तेरित कारण रसायन कथा तज्जो सनात आशु अपवर्गवर्तमनि सद्धारती भक्ति भविष्यति अनुक्रमिष्यति। सत्संग में यदि श्रीमद्भागवत का चैतन्य चरितामृत का श्रवण किया जाए तो बहुत सहज रूप में बिना पैसे के बिना किसी एनर्जी दिए हुए सहज स्वाभाविक रूप में हम भगवान के प्रति श्रद्धा भगवान के प्रति फिर भाव भक्ति और प्रेमा भक्ति लाभ करके इस संसार को छोड़ करके सदा के लिए कृष्ण सेवा में नियुक्त हो सकते हैं। मैं श्रीमद् भागवत से कुछ प्रसंग आपको बतला रहा हूं, इसमें से सीखने की चेष्टा करेंगे, ग्रहण करने की चेष्टा, यदि अच्छी लगे तो, और न लगे तो कोई बात नहीं। मैं अपनी दुकान में जो रहने वाले जो फल है मैं उनको लेकर के वृंदावन में फिर लौट जाऊंगा, यदि ले लिया अच्छा है, और बिना मूल्य का दूंगा फ्री, कोई पैसा नहीं चाहता, उसके बदले में कोई भी हमारा वांट नहीं है। वृंदावन से सुंदर मीठे मीठे फल ले आया हूं अपनी टोकरी में, यदि आप लोग लेना चाहेंगे तो उसे ले लेंगे, और नहीं पसंद हो तो जैसे कि दूध गली गली जाता है कोई नहीं लेता, और लीकर के दुकान में शराब की दुकान में इतना भी बचता नहीं है, यदि कोई दूध फ्री भी बांटे तो नहीं लेंगे, कोका कोला ले लेंगे बहुत आसानी से। तो इसलिए मैं मधुर मधुर ये जो वृंदावन से जो फल ले आया हूं उसको यदि ले ठीक है, और नहीं तो मैं अपना लौटा करके वृंदावन में ही चला जाऊंगा, वहां पर बहुत ग्राहक है और वहां पर मूल्य भी बहुत है, वहां पर मूल्य देने पर भी बहुत सहज बिक जाता है। नारद जी किसी समय ब्रह्मा जी के पास में गए, काजी ब्रह्मा जी उनको प्रणाम किया और बोले मैं एक बार पृथ्वी लोक में गोकुल में गया और वहां पर एक नंद भवन में एक नंद गोप के घर में एक बड़े सुंदर लड़के को मैंने देखा, उसको देखने से चित्त को वो हर लेता है, बहुत छोटा सा, सिर पर मोर मुकुट, अधरों पर बंसी, पीतांबर कपड़े पहनता है, बड़ी लोभनीय दृष्टि से देखता है, एक बार यदि कोई भी देखा बस उसका वो हो जाता है, उसका दिल चुरा लेता है। दो दिन के बाद ही, जन्म के दो दिन बाद ही कंस की भेजी हुई पुतना गई और सहजी रूप में उसके कालकूट 20 स्तन से पीकर और उसे कहा माता की गति दे दी। मैंने ये भी देखा और सुना कि कंस ने उसको मारने के लिए बहुत से असुरों को भेजा जो कि हवा बन करके गए, कोई बिना देखे हुए जाकर के गाड़ी में प्रवेश हो गया, कृष्ण को पिचटना चाहा, कुचलना चाहा, किंतु जो गया वो संवाद देने के लिए लौटा नहीं। मैंने ये भी देखा कि अब थोड़ा सा बड़ा हो जाने पर छोटे छोटे बछड़ों को लेकर और हजारों दाम सिदाम सुदाम वसुदाम स्तो कृष्ण लवंग अर्जुन उज्जवल मधुमंगल इत्यादि शाखाओं को लेकर एक वन से दूसरे वन में जाता है। कैसे जाता है? बरहा पीड़म नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम बृहद बास कनक कपिशम वै जयंती शमालन रंध्राण वेणु रधर सुधया पूरयन गोपविंदई बिंदारण्यम शबदरमणम प्राविशत गीत करते। और बिजली के समान पीतांबर उसके फहरा रहे हैं, मानो उसका शरीर कैसा है, मेघ के समान में नील वर्ण का है। बंसी तो मानो कमाल करती है, सखा लोग चारों तरफ से उसे घेरे रहते हैं, जय कन्हैया लाल की कहते रहते हैं, और लाखों गायें उसके पीछे आगे पीछे बाहर में इधर उधर डोलती रहती हैं, और उन गायों को लेकर के एक सुंदर वृंदावन के वन से दूसरे वन में जाता है, जहां जाता हिरण भी उसके मुख के तरफ में कर करके उसे प्रणय की भिक्षा मांगते हैं, प्रणय माने प्यार की भिक्षा मांगते हैं, अपना वो मुख नहीं हटा सकते, नेत्र उनके मुख से नहीं हटा सकते, मेघ उन पर उमड़ घुमड़ कर सुशीतल जल की वर्षा करता है कि हमारे प्रेम मित्र आ गए हैं, यमुना नदी समझती कि हमारे प्रियतम आ गए, और अपने हाथ रूपी तरंगों से उनके चरणों में कमल की पुष्प को देती हैं। आपको पता है ये सब चीजें, मैं भूल गया था, तुमने याद दिला दी। मैं अभी जाता हूं, कल ही जाऊंगा। जब गोचारण करने के लिए जाता है ब्रह्मा जी, दूसरे दिन वहां उपस्थित हुए ब्रजमंडल में, आकाश मंडल में देख रहे हैं जय कृष्ण ऐसे ही गायों को लेकर के जा रहा है चराने के लिए। जाते जाते उन्होंने देखा एक बहुत बड़ा भारी सांप अजगर है, 6 मील लंबा और 1 मील चौड़ा और 1-2 मील ऊंचाई में, और उसने ऐसे मुख को किया है जैसे एक मुख पृथ्वी पर और दूसरा उसका होठ आकाश में ऐसे लगा हुआ है, मानो पर्वत हिमालय पर्वत की कोई मिलो लंबी चौड़ी कोई गुहा हो। सामने में कालीन लाल बिछा हुआ है, कालीन नहीं है वो जीभ उसकी है, और उसके भीतर से बड़ी दुर्गंध आ रही है क्योंकि कितने जानवरों लाखों जानवरों को अपने पेट में रखा है, और आग विष की निकल रही है। सखाओं ने देखा, ब्रह्मा जी ऊपर में देख रहे हैं और भी देवता लोग ऊपर में हैं, देवियां वहां पर चारों तरफ से कृष्ण की लीला को देखने के लिए आकाश मंडल में परिव्याप्त है विमानों पर, और उसी समय में ब्रह्मा जी देख रहे हैं कि सखाओं ने देखा, उन्होंने कहा अरे ये क्या है, ये पर्वत तो मानो सांप के समान है, ये तो बड़ा भारी कंदरा जैसा इसमें है, ऐसा मान लगता है कि अजगर किंतु है ये पहाड़ की कंदरा, चलो भीतर में जरा देखाएं। तो कृष्ण थोड़े से पीछे थे, बछड़े आगे थे और ये सखा लोग। एक ने कहा जी भाई यदि कुछ गड़बड़ हो जाएगी तो, यदि असुरों की माया हो तो, अरे कन्हैया तो है पीछे क्या बात है, कल कोई भी बात। और उस दिन बाई चांस बलदेव जी साथ में नहीं थे, खेलते हुए बांसुरी बजाते हुए और सिंगा बजाते हुए लोग आगे बढ़े, पर्वत की कंदरा में ज्यों ही माने सांप के मुख में ज्यों ही वो जा रहे थे। वो कृष्ण को मारना चाहता था, यही अघासुर था। अघासुर माने क्या, अघ की मूर्तिमान मूर्ति, पाप होते हैं जितने, समस्त पापों को ब्रह्म हत्या से, गो हत्या से, मातृ हत्या से, गुरु पत्नी की हत्या व्यभिचार से, जितने भी बड़े से बड़े पाप हैं वो सब का वो मूर्तिमान विग्रह था। कृष्ण को कंस के मित्रता के नाते मारना चाहता था, कंस ने उसे भेजा था। इसलिए बच्चे जब प्रवेश करने लगे कृष्ण ने देखा बहुत दूर, अरे ये है ये क्या कर रहे हैं, कहां जा रहे हैं, उनको बोल करके रोकना चाहा किंतु जरा दूर थे इसलिए नहीं रोक सके। इतने में ये लोग प्रवेश कर गए बछड़ों के साथ में सारे सखा लोग, और प्रवेश करते ही उसके भयंकर विष की सुगंध से गंध से सारे बच्चे मूर्छित होकर के वहीं पर पेट में पड़ गए, किंतु उसने अपना मुख बंद नहीं किया। अभी असल शत्रु तो आया नहीं इसलिए मुख को खुला रखा। कृष्ण भी देखा जी भाई तो जल्दी से प्रवेश करके बच्चों को और बछड़ों को बचाना है, भीतर में प्रवेश उन्होंने किया। जब प्रवेश किया तब जब अपना मुख, बस काम समाप्त, अभी मैं अपने स्वामी को अभी खबर देना है जैसे वो आपका शत्रु नष्ट हो गया। और जय ही बंद किया, कृष्ण की अमृत भरी दृष्टि से सारे बछड़े और बच्चे तो जीवित हो गए। और इधर में कृष्ण एक लाल लोहे की गोले की भांति, जलते हुए अंगार की भांति उसके गले में अटक गए। अब वो भीतर भी सांस नहीं ले रहा, ऊपर भी नहीं। भई गति सांप छुछुंदर केरी, किसी सांप ने छुछुंदर को अपने गले में ले लिया, न भीतर ले जा रहा न बाहर, वहीं पर छटपट करके मर जाता है। ऐसे ही गले में कृष्ण रुद्ध हो गए, अब बाहर न जाए न भीतर न सांस ले सके न प्रश्वास, मिनटों में उसकी आंखें एकदम निकल आईं, और साथ ही साथ में उसके प्राण निकलने लगे। ब्रह्मरंध्र उसका फट गया, ए बैठो बैठ जाओ, अब जब यहां पर अटक गया तो सांस नहीं ले सका, छटपट कर कर ऐसे करने लगा और साथ ही साथ में उसके प्राण यहां से फट गए और निकल करके चले गए। जोगी लोग समाधि में अपने चित्त को पवित्र कर लाखों वर्ष तक तपस्या करने पर भी जिस कृष्ण को अपने ध्यान में भी नहीं ला सकते, आज देखो तो कृष्ण की ऐसी कृपा, जो अघासुर के पेट में चले गए अकेले नहीं, लाखों करोड़ों सखाओं और बछड़ों के साथ और स्वयं चले गए अपने स्वरूप से, ये किस पुण्य का फल है विचार करें। हां ये कोई पुण्य का फल नहीं है, एक चीज का फल है, क्या? कुतना ने मैया का वेश बना करके के अरे बेटे 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 लाला लाला और कह करके कृष्ण मुख के मुख में जो विष दिया, ये वेश जो बनाया ये वेश बनाने का फल है। और यदि सचमुच में कोई भगवान के प्रति ऐसा भाव था तो उसके लिए बात ही क्या। अघासुर ने कोई तपस्या नहीं की, कोई भजन नहीं किया, कोई साधन नहीं किया, केवल उसकी बहन होने के नाते पूतना, और देखो ये कैसी गति हो गई। तो इसी तरह से भगवान के भक्तों के प्रति यदि वेश भी बनाया, गले में तुलसी भी ले लिया, तिलक भी यदि कर लिया, जम उसको कभी देख नहीं सकता, भूल से भी जाकर के राधा रमन जी को प्रणाम कर लिया, स्वामी जी को प्रणाम कर लिया, अनजाने में ही मंदिर की परिक्रमा कर लिया, जम की हिम्मत नहीं जो आपके आपास में आ जाए। ये अजमाई हुई चीज है, परीक्षा की हुई चीज है, इसमें कोई डाउट मत करो, कोई भी डाउट मत करो। इस तरह से ब्रह्मा जी ने देखा कि उसका ये फट गया। अब देखो तो इस आज तक मैं जिस प्रभु को अपने ध्यान में नहीं पाता और ये प्रभु अपने बछड़ों के साथ अपने सखाओं के साथ में इसके पेट में चले गए, हृदय में, हम तो धारणा नहीं कर सकते। इतने में देखा ये फट गया, उसकी आत्मा निकली और आकाशमंडल में बिजली की भांति घूमने लगी। घूम किस लिए रही है, कोई कारण है। इतने में कृष्ण ने उसके मुंह को फाड़कर और उसमें से स्वयं बछड़ों को निकाला और सखाओं को निकाला, जो ही निकले ते ही ज्योति जो घूम रही थी घूमती घूमती चक्कर काटती हुई कृष्ण के अंगूठे में, पैर के अंगूठे में समा गई, प्रवेश कर गई। ब्रह्मा जी आज देखो तो एक तो उसके पेट में गए, उसे पवित्र कर दिया और फिर वो भगवान के चरणों में ही लीन हो गया। इसको कहते हैं मुक्ति। कृष्ण इतने बड़े दयालु, ऐसे असुर को जो उनको मारना चाहता था तो भी उन्हीं की चिंता कर रहा था, वो कब आएगा कृष्ण, कब आएगा कृष्ण, कब आएगा कृष्ण, कब उसे मैं मारूंगा, कब उसे निगल लूंगा। इस चिंता के कारण प्रभु उसके अंदर में गए, उसको पवित्र कर दिया और साथ साथ में इसको मुक्ति दी। मुक्ति दो प्रकार की होती है, एक तो होती है जो भगवान में मिल जाए एकदम और भगवान हो जाए, अहम ब्रह्मास्मि शिव अहम, बहुत खतरनाक है ये जीवन को चौपट कर दी। भगवान के भक्तों को दिए जाने पर भी भगवान से भक्त लोग नहीं लेते, दियमान अपना ग्रहणंति पिना मत सेवनम जना, भगवान कहते ले लो मुक्ति, भगवान कभी नहीं, खबरदार मुक्ति, हमको मुक्ति नहीं, आपके चरणों की सेवा चाहिए, हम जहां भी रहें विश्व में कहां भी जन्म हो हमारा, पशु पक्षी के कीट के तंग के रूप में चाहे त्रिण गुल्म के रूप में भी हमारा जन्म हो जाए, बस आपके भक्तों के यहां हम जन्म लेना चाहते हैं, हम मुक्ति नहीं चाहते। और एक मुक्ति होती है प्रेम सेवा युक्त, जैसे नारद जी, जय विजय जी और जो भक्त लोग वहां पर रहते हैं, ये सब मुक्ति होती है उनकी सेवा, ऐसे लोग भक्त लोग ले। किंतु ब्रज के भक्त लोग ये भी नहीं लेना चाहते, वो क्या चाहते हैं, ब्रज में हम तृण गुण लता होए, गोपियों की चरणों की धूली को हम स्पर्श कर सके, बस हम यही चाहते हैं, कृष्ण की राधा कृष्ण की सेवा हम चाहते हैं और हम कुछ नहीं चाहते हैं। हमारे जितने भी आचार्य लोग हैं यही चाह, ब्रज में राधा कृष्ण कंजूल की हम सेवा किसी प्रकार से पा जाए, राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर जीवने मरण आर मोरा राधा कृष्ण प्राण कुले ओ, हमारा ऐसा कैसा सौभाग्य हो। राधा कृष्ण जुगल ही हमारे प्राण हैं, लाइफ एंड सोल है। इनके अतिरिक्त मैं कुछ नहीं जानता। आ कब जीवन हमारा होगा ऐसा, ऐसा सौभाग्य होगा। यमुना के किनारे जो इठलाती हुई चल रही हैं, बह रही हैं, सामने सुंदर कदम्ब और तमाल के वृक्ष हैं, बेली चमेली खिल रही है, कमलों पर भौरे मड़रा रहे हों, और वहां पर राधा कृष्ण जी का विहार का स्थल हो, हम कब उनकी सेवा करें, ऐसी संभावना है। वो खोज करके दिन रात इसी की चिंता करता रहता है। तो इस तरह से ब्रह्मा जी ने देखा, अरे भाई ये कैसे ये मिल करके आकाश मंडल में होकर के और उनके चरणों में ये प्रवेश कर गया, वो कितना बड़ा भारी सौभाग्यवान है। हम देखते हैं कि लाखों लोग लाखों वर्षों तक कृष्ण की आराधना करके उन पर ऐसी नहीं कृपा होती, बड़ी आश्चर्य की बात है। मैं कुछ ऐसा करूं जो इनकी और दो एक लीलाएं देखूं, कितनी मधुर लीलाएं हैं। इसलिए उन्होंने ज्यों ही ऐसी की तही जोग माया ने एक अपूर्व खेल खेला। खेला क्या, कृष्ण के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, भक्तों के ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। वे लोग गधे धेनुकासुर हैं जो कृष्ण पर भी कंट्रोल करना चाहते हैं, भक्तों पर कंट्रोल करना चाहते हैं। इसलिए बलदेव रूप गुरु ने धेनुकासुर का उनके लोगों का वध किया। इसलिए ब्रह्मा जी सोच रहे हैं कि मैं यदि कुछ ऐसा कर दूं जिससे कि इनकी कुछ और मधुर लीलाओं को मैं देख सकूं तो मुझे क्या करना चाहिए। जोग माया ने साथ ही साथ में कुछ उनके अंदर में काम करना आरंभ किया। क्या, कृष्ण ने देखा वो ब्रज की जितनी भी माताएं हैं वो माताएं चाहती हैं कि मैं उनका पुत्र हूं, वो अपने बेटों से भी मुझे प्यार अधिक करती हैं। इसलिए उन्होंने देखा जे कृष्ण हमारे घरों में चोरी करने के लिए आता है मक्खन। कृष्ण जाते हैं और उनकी मधुर मधुर लीलाओं को वो देखती हैं, सोचती हैं कि जब से ये कृष्ण का जन्म हुआ है हमारे घरों में मक्खन इत्यादि के लिए आता है, तब से न जाने ब्रज में कितना गुना मक्खन बढ़ गया, गायों का दूध बढ़ गया, धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। भागवत में लिखा जयति तेधिकम जन्मना ब्रज श्रयति इंदिरा स्वस्वदत्रहि दयित देशताम दीक्षुस्तावका त्वैधृता स्व त्वाम विचिन्वते तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणन्ति ते मां जन।
कहते हैं कि जब से कृष्ण का ब्रज में आए हैं ब्रज धन धान्य और प्राकृतिक सौंदर्य से भर गया है, तो उन गायों में दूध क्यों न बढ़ जाए, वहां की एक एक गोपियां कोटि कोटि लक्ष्मी से भी अधिक श्रेष्ठ हैं। केवल लक्ष्मी नहीं, उनके अंगों से कोटि कोटि लक्ष्मी झरती रहती हैं, ऐसी वहां की गोपियां हैं। तो क्यों नहीं वो सब कृष्ण का वो दर्शन करके अघाती नहीं है। इस तरह से ब्रह्मा जी सोच रहे हैं, जोग माया ने देखा, कृष्ण की ये इच्छा है कि जितनी भी ब्रज में माताएं हैं कोटि कोटि अपने बेटों से मुझे अधिक आदर करती हैं और चाहते हैं कि मैं उसका स्तनपान करूं, तो मुझको ऐसा करना चाहिए। और यदि ऐसा नहीं करता तो जे जथांग माम प्रपद्यन्ते ताम तथा वो भजाम्यहम्, जो जैसा हमारा भजन करता हम करते हैं उसको उसी के रूप में उसका प्रतिफल नहीं दूंगा तो मैं अकृतज्ञ हो जाऊंगा, तो मेरी वेद की प्रतिज्ञा, गीता की प्रतिज्ञा भंग हो जाएगी। जो जो कामना लेकर के हमारी जैसी भजन करते हैं ठीक उसी रूप में भगवान उसको पूर्ण करते हैं। यदि निराकार रूप में कोई भजन करता है तो उसी रूप में, मैया के रूप में तो मैया, यदि कोई मित्र के रूप में भजन करना चाहता है तो मित्र, जो जिस रूप में चाहेगा उसी के रूप में वो कृष्ण मिल जाते हैं। राम के लिए संभव पर नहीं है और दूसरे अवतारों के लिए संभव नहीं, ये तो केवल राधा रमण जी का ही ये कृपा से संभव। इसलिए कृष्ण ने सोचा जी इनकी हम इच्छाओं को कैसे पूर्ण करेंगे, इन सबका बेटा मुझे होना है। दूसरी बात एक और, ब्रज की जितनी भी लड़कियां हैं जिनका विवाह हो गया है, जिनका विवाह नहीं हुआ है, वो सभी क्या चाहती हैं? कृष्ण ही हमारे वर हों, कृष्ण ही हमारे प्यारे हों, प्रियतम बने। आप लोग कृपा करके थोड़ा सा और आगे आ जाइए, काफी जगह है। हमारे प्रियतम हो तो भला उनकी इस इच्छा को कैसे, ये राम तो है नहीं जो बस एक सीता का अतिरिक्त और नहीं, और सीता जी को भी निकाल दिया घर से। कृष्ण ऐसे नहीं, हमारे बड़े रसिक हैं, रसो वही सह हैं। इसलिए जो कोई भी इच्छा करते हैं, जो कोई इच्छा करे वो कृष्ण जरूर पूर्ण करते हैं। इसलिए सोचा जी जितनी ब्रज की लड़कियां हैं, कुमारियां हैं, जो भी हैं, उन सबकी इच्छा को पूर्ण करना है। एक बात और भी हुई, रामलीला में जनकपुर की जितनी भी राजकुमारियां थी सीता का राम के साथ में विवाह होते देख करके उनको लोभ लग गया, वर मिले तो ऐसा ही, हे प्रभु हे भगवान हमको ऐसा ही वर दीजिए राम जैसा, तो राम जैसा वर कहां मिलेगा, तो राम को ही आना पड़ेगा। इसलिए कृष्ण ने मनी मन में उनकी भावनाओं को देख करके कहा जी देखो मैं त्रेता द्वापर युग में कृष्ण होकर के आऊंगा और तुम्हारी सारी लोगों की इच्छाएं पूर्ण करूंगा, इस राम के रूप में मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूं, मैं कुछ भी नहीं कर सकता एक सीता के अतिरिक्त, उनको भी छोड़ना पड़ेगा किसी मर्यादा की रक्षा के लिए। हृदय से तो नहीं छोड़ सकूंगा किंतु बाहरी तरह से हमको कुछ लोक शिक्षा के लिए ऐसा करना पड़ेगा। इसलिए वो जितनी थी वो, और दंडकारण्य में 60,000 ऋषि कृष्ण की को अपना प्रियतम बनाने के लिए, गोपी भाव को प्राप्त करके गोपी भाव से कृष्ण की सेवा करने के लिए आराधना कर रही थी 60,000, कितने वर्षों से, लाखों करोड़ों वर्षों से। बाई चांस रामचंद्र जी आए दंडकारण्य में गए और उनके भावों को देख करके उनकी प्रार्थना सुन करके मन ही मन में स्थिर किया इस जन्म में मैं नहीं कुछ कर सकता, तब हां तुम लोग द्वापर युग में गोपियों के गर्भ से जन्म लेना और मैं उस समय में कृष्ण बन करके आऊंगा और सारी जो गोपियां तुम लोग बनोगे उससे हमारा संपर्क होगा, तुम गोपी बन करके हमारी सेवा कर सकते हो, तुमको अंगीकार कर लूंगा। शूर्पणखा जिसका नाक कान काट लिया वो भी ब्रज में पहुंच गई, कैसे कैसे पहुंची, राम के रूप को देख करके वो मुग्ध हो गई, राम के पास में गई, मेरे समान सुंदर और आपके समान सुंदर जुआ कोई नहीं, मैंने तो अपना दिल आपके ऊपर में न्योछावर कर दिया है। राम ने तो मन ही मन सोचा जैसे मैं तो वंशा कल्पतरु हूं, मैंने तो ग्रहण कर लिया किंतु बाहरी रूप में नहीं ग्रहण कर सकता एक सीता के अतिरिक्त, अच्छा ऐसा करो, इसका नाक कान काट लिया जाए ना तो कोई से शादी नहीं करेगा, इसलिए ये बच जाएगी और दूसरे जन्म में जब तक हमसे नहीं मिलेगी तब तक खुबड़ी बना करके रखो, जे कंस के दरबार में भी जाने पर कंस इसको छेड़छाड़ न कर सके या कोई भी दूसरा छेड़छाड़ न करे, इसलिए उसे कुबड़ी बना दे। किंतु मुख बड़ा सुंदर बना, जब कृष्ण से मिली तब कुबड़पन को ऐसे कर करके बड़ी सुंदरी करके उसे भी ग्रहण कर लिया। आप लोग जानते हैं कृष्ण नरकासुर के जेल खान में पड़ी हुई 16108 कितनी सब थी रानियां थी राजकुमारियां थी जिनको पकड़ करके नरकासुर ले गया था, अपने भोग के लिए लिया गया था। कृष्ण उसे मार करके उनका उद्धार किया, बोले जो तुमको तुम्हारे पतियों के यहाँ बहन भेज दूं, जो पति अब नहीं ग्रहण करेंगे, मैया नहीं ग्रहण करेंगी, हमारे भाई नहीं करेंगे, हमारे पिता नहीं ग्रहण करेंगे, अब हम तो आपके चरणों में ही रहेंगी, आप अपने दासियां हमें बना ले, आपके घरों में बर्तन मजेंगी, सब काम करेंगी, झाड़ू देंगी, किंतु अब आपको नहीं छोड़ी। कृष्ण जी ऐसी बात तो चलो मैं पटरानी बनाऊं, और सबको 16,000 ले जाकर के वहां पर पटरानी बनाया कि नहीं। ऐसा दयालु कौन जगत में है कृष्ण जैसा, जिनका भजन छोड़ करके हम ये गणेश जी और सब देवताओं की उपासना करें। ये भगवान की विभूतियां हैं, जगत की चीजें देते हैं किंतु नश्वर देते हैं, ऐसा क्यों हम कृष्ण का भजन करें। तो सब लोगों की इच्छा पूर्ण करनी है, कैसे पूर्ण होगा, इसलिए जोग माया को आदेश दिया, जोग माया ब्रह्मा जी के हृदय में पहुंच गए और उन्होंने सोचा जो मैं ही कर रहा हूं, हम कुछ भी करते हैं बिना भगवत शक्ति के नहीं कर सकते, किंतु समझते क्या मैंने किया, घर किसने बनाया मैंने किया, मंदिर किसने बनाया मैंने किया, तुमने क्या किया खाक, ये तो यहाँ के लोगों ने सब पैसे एक एक दिए तब तो ये बना, तुमने क्या किया, अभिमान मत रखो, खुद तुम कुछ भी नहीं है, श्वास भी ले रहा है भगवान की कृपा से ले रहा है, ऐसे समझो। तुमको गर्भ में किसने सेवा की, बचाया किसने, याद रखो किसने किया, वही प्रभु ने ही किया। जन्म किसने दिया, माता पिता ने नहीं तो लाखों बांझी स्त्रियां और पुरुष पड़े हुए हैं, उनको पुत्र नहीं होता, इसलिए यह सबके मूल सर्व कारण कारण ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद शरण, ये गोविंद ही ये राधा रमण ही सर्वस्व है। इसलिए जोग माया जी ब्रह्मा के हृदय में प्रवेश करके और उसने कहा जे एक ही साथ भगवान के बहुत से काम पूरा होंगे, इसलिए ब्रह्मा जी ने क्या किया कि जब बच्चे खा रहे थे अगासुर के बाद में जबकि उनके चरणों में मिल गए, तो वो कोई बहाना ढूंढने लगे जे कैसे इनको मैं परीक्षा करूं या कैसे मैं इनकी लीलाओं को देखूं, इसलिए वो क्या करने लगे, ये लोग जब खाने में मत्त हो गए तो जितने बछड़े थे वो चरते हुए घासों के लोभ से आगे बढ़ गए, कृष्ण को पीछे कर दिया। ये पीछा करना ही बड़ा भारी खतरनाक है, कृष्ण के सुन्मुख हो उन्मुख हो विमुख मत बनो, जहां कृष्ण के विमुख हुए सेवा के वैष्णव के विमुख हुए उन्मुख, उन्मुख और विमुख समझ रहे हैं ना, उन्मुख माने उनके तरफ में मुख और विमुख माने पीछे, इन लोगों ने जब कृष्ण के तरफ में अपना पीछा कर दिया और मुख कर दिया सामने घासों के तरफ में, ये घास क्या है, इंद्रियों का सुख है, इसलिए थोड़ी देर में ब्रह्मा जी को सुजोग मिला और वो बच्चनों को लेकर के एक कंदरा में बंद कर दिया। अब वो लोग देखने लगे जी भाई बछड़े किधर गए, ये तो हमारे गोधन है कहां गए, ढूंढने लगे। कृष्ण कहा जी तुम लोग बैठो खाओ, मैं अकेले अभी चढ़ता हूं बंसी बट पर और वहीं से बंसी बजाऊंगा और वहीं से उनको बुलाऊंगा और वो झट वहीं से आ जाएंगे। इसलिए उन्होंने चेष्टा की और हाथ में क्या किया, हाथ में कवल दधी और अन्न का और बंसी को फेटे में लगा दिया, कुछ मुख सुख सा गया जैसे आदमियों का होता है कोई चीज गुम होने पर। आज गोपियां क्या कहेंगी, यदि बछड़े नहीं लौटे और हमारे सखा लोग ब्रज में नहीं लौटे तो हमारी क्या दुर्दशा होगी, मैं कैसे मुख दिखाऊंगा, कैसे ब्रज में लौटूंगा, मानो भगवान को ऐसी भावना हुई, भगवान की भगवत्ता ब्रज में एकदम भूल जाते हैं, यशोदा जी उनका कान पकड़ेंगी, कृष्ण रोएंगे, इसलिए वहां पर भगवत्ता उनकी काम नहीं चलती ब्रज में, इसलिए सोच रहे हैं। और इतने में कृष्ण खोज रहे हैं, इतने में ब्रह्मा जी ने उनके सखाओं को भी लेकर के एक दूसरे कंदरे में बंद कर दिया। कृष्ण भाई सोच रहे हैं कहां गए बछड़े, खोजते खोजते जब नहीं मिले तो लौटे उसी स्थान पर जहां पर की भांडीर वन में जहां पर की भोजन कर रहे थे बच्चे लाखों। देखा जी बच्चे भी नहीं, हमारे सखा कहां गए। अच्छा थोड़ा सा आंख बंद किया, अरे ठीक है ठीक ठीक है, बहुत अच्छा बहुत सुझ, अब हमको एक ही साथ में बहुत से काम करने हैं। साथ ही साथ जितने उनके साथ में बच्चे थे वो बच्चे बन गए कृष्ण स्वयं, उनकी लठिया बन गए, उनकी कंबलिया बन गए, उनकी बंसी बन गए, और उनका जैसा स्वर जैसा स्वभाव सब कुछ कृष्ण ही बन गए। इसके बाद में क्या हुआ, जितने उनके साथ में बछड़े थे वो सब बछड़े भी बन गए। अब घर में जब लौटे बछड़ों को लेकर के और बच्चों को लेकर के, उनकी मैयाओं ने आज उनकी इच्छा पूर्ण हुई, उनके बच्चे बने हुए हैं कौन, स्वयं कृष्ण। उन्होंने आज अपने बेटे से भी अधिक कृष्ण को प्रेम करके चुंबन करके आलिंगन करके आरती उतार करके घर में ले गई। आज कृष्ण को भूल गई, आज यशोदा मैया केवल कृष्ण की अगवानी कर रही हैं, उनका स्वागत और आरती उतार रही हैं, और दूसरे दिन सभी माएं वहां पर उपस्थित हो जाती थीं, माताएं, और कृष्ण को पहले गोदी में लेकर के चुंबन करके आलिंगन करके आशीर्वाद दे करके तब अपने बच्चों को गोद में लेती थी। आज हो गया उल्टा, अब कृष्ण को भूल, क्यों, कृष्ण और बच्चे दोनों आज एक है। और गैया क्या हुआ, अपने नए बछड़ों को भी छोड़ करके ये पुराने जो बछड़े हैं उनका चाटने लगी, मानो अपने हृदय में ले लेंगे, अत्यंत अधिक स्नेह। आज कृष्ण एक ही कृष्ण आज इतने बछड़े बन करके गायों की इच्छा पूर्ण कर दी और माताओं की इच्छा पूर्ण कर दी। और एक चीज रह गई, क्या रह गई, अभी बतला रहा हूं। गर्गाचार्य ने इसी वर्ष एक वर्ष के अंदर में ये घोषणा की, यह वर्ष सबसे उत्तम वर्ष है, इस वर्ष में समस्त गोपों को अपनी लड़कियों की शादी कर देनी है जरूर, यहां तक कि जिसके गर्भ में बच्चा है उसमें यदि दोनों मिलकर के ये संकल्प कर लें, यदि हमारी बेटी होगी तो तुम्हारे बेटे के साथ में शादी होगी, और यदि बेटा होगा तो तुम्हारी बेटी होगी तो शादी कर लें। ऐसा भी हुआ और सब जितने भी ब्रज में जितनी कन्याएं थीं सबकी शादी इसी वर्ष में हुई। किससे शादी हुई, कृष्ण से, योग मैंने ऐसी की, सारी इच्छाएं एक साथ में पैदा हुई, कृष्ण इसी तरह से करने लगे। एक बरस तक ऐसी लीला की, ब्रह्मा ने सोचा जो देखें क्या करता है, इतने में एक मिनट के लिए गए अपने ब्रह्मलोक में, जरा देखा हूं तो वहां से, वहां पर जही पहुंचे तो ही वहां के जो गेट कीपर हैं उनका, जी आप कौन हैं, आप बाहर रहिए। अरे मैं चतुर्मुख ब्रह्मा, तो तुम चतुर्मुख, वहां तो हमारे प्रभु जी बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा जो देखो हमारा रूप धारण करके आएगा तो उसको इधर में मत आने देना, उसको बाहर कर देना। कृष्ण वहां पर भी बैठ गए और उनको वहां पर आने नहीं दिया। फिर उन्होंने देखा, अरे भाई ये कौन हमारी जगह पर बैठ गया, अरे ये तो प्रभु वही तो बैठे हुए हैं, बस झट लौटे। इतने में एक बरस जब ही आए तो देखा जी कृष्ण ऐसे ही गो बछड़ों को लेकर के सखाओं को लेकर के प्रतिदिन लीलाएं कर रहा है। उन्होंने कहा जैसे ये बछड़े कौन है, मैंने तो उनको चुरा करके रखा, पहले देखूं तो जा करके दे, जब बछड़े और बच्चे वहां पर बंद हैं कंदरे में, और इधर में देखो जी कृष्ण के साथ में रोज खेल रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं चरा रहे हैं। अच्छा असली बछड़े कौन है, नकली कौन है, ये सोचने लगे। इधर भी देखा दो सिर और चार आंखों से और उधर चार आंखों से, उधर देखा जो वो भी ठीक है इधर भी ठीक है, ऐसा तो नहीं करता जो इधर ले आए इधर ले आए, ऐसा भी नहीं। तो फिर कौन से अच्छे, कुछ समझ नहीं सके, तो देखा जो ये प्रभु की ही लीला है, झट उनके चरणों में गिर गए। चरणों में जाकर के कृष्ण वहां पर क्या कर रहे हैं, हाथ में उसी प्रकार से कवल, मुख से पसीने की बूंदे निकल रही हैं, मन बड़ी चिंतित है, हमारे बछड़े और सखा किधर गए, और बंसी भी यहां पर ठहरो। इसके बाद में चरणों में गिर गए। ज्यों ही थोड़ा सा ऊपर उठाते हैं देखने के लिए, देखा वहां पर तो कृष्ण है ही नहीं, जितनी वहां पर जो कुछ देख रहे हैं सब चतुर्मुख हो गए नारायण, शंख चक्र गद पदा पद्म लेकर के जितने पेड़ पौधे मनुष्य जितने जानवर सभी केवल चतुर्मुख माने ये हो गए, नारायण का रूप धारण किया। और फिर उठ करके प्रणाम करना चाहे, इतने में फिर देखा जे कृष्ण वैसे ही बंसी लिए हुए और चारों तरफ में जा रहे हैं, ढूंढ रहे हैं बछड़ों को। और ब्रह्मा से लेकर के यहाँ तक विष्णु महेश ब्रह्मा इत्यादि कोटि कोटि मुख वाले उनकी स्तौ स्तुति कर रहे हैं, ब्रह्मा जी का मोह टूट गया। इतने में होता है क्या, बलदेव जी एक दिन जब बाकी रहा तब बलदेव जी देख रहे हैं, क्या देखा, ये गायें अपने पुराने बछड़ों को अधिक प्यार करती हैं नए वाले को नहीं, ऐसा क्यों, और जितनी माताएं हैं अपने नए बच्चों को प्यार नहीं कर करके आपने एक बरस दो बरस वाले जो बच्चे पांच छह बरस वाले पुराने जो हैं उनको अधिक प्यार करते हैं क्यों। देखा जैसे ये कौन है, ये ना तो आसुरिक माया नहीं हो सकती, फिर ये देवताओं की माया नहीं हो सकती, ये दूसरी कोई माया नहीं हो सकती, मैं भी नहीं समझ रहा। ध्यान लगाया देखा, अरे ये तो कृष्ण ही बना हुआ है, उसका एक मैया का दूध पीने से पेट नहीं भरा, लाखों मैयाओं के पेट दूध से पेट नहीं भरा, लाखों अब गौओं को दूध पीने के लिए लाखों बछड़े तक बना हुआ है, ये तो सब उन प्रभु के लिए रहा है। बस झट उनके चरणों में गिर गए। इसलिए कृष्ण ये साधारण नहीं है, तो ब्रह्मा जी उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। नौमिद्धते अब्र बपुषे तड़िदम्बराय गुंजाव तंस परिपुच्छल सन्मुखाय लक्ष्मास्ये मिदुपदे पशुपांगजाय। पशुपांगजाय आप देवकी के पुत्र नहीं हैं, आप वसुदेव जी के पुत्र नहीं हैं, पशु को चराने वाले जो नंद बाबा हैं उनकी जो पत्नी हैं उनके अंग से आप पैदा हुए, आप तो नंद नंदन श्याम सुंदर यशोदा नंदन राधा कांत राधा मोहन इत्यादि हैं, और हाथों में आप कवल लेकर के चारों तरफ में विचरण कर रहे हैं, ऐसी अद्भुत लीलाएं कर रहे हैं और उनकी स्तौ स्तुति कर रहे हैं। अंत में उन्होंने कहा ओ भाग्यम नंद गोप प्रजौ श्याम जनमित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। आप ही जगत के पूर्ण ब्रह्म हैं, सारा जी आपका दास्य है, एटर्नल सर्वेंट आपका है, सभी आपके पार्ट एंड पार्सल हैं। जो लोग भगवान का भजन कृष्ण का भजन नहीं करते वे बड़े भारी दुर्भागा हैं संसार में, वो दुर्भागियां हैं स्त्रियां, इसलिए कृष्ण का ही भजन करने बड़े सौभाग्य की बात है। ओ भाग्यम ओ बड़े सौभाग्य से कृष्ण ब्रज में रह रहे हैं। अब समय हो गया है, समय भी हो रहा है, इसलिए संक्षेप में मैं इसको बतलाएं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं ओह मैं ब्रज में कहीं गोपों की और ग्वालिनों की चरणों की धूल मुझे मिल जाए, कहीं गोकुल में मेरा जन्म हो जाए। ओ मेरा जन्म तो ऐसे संभव नहीं है, मैंने तो उनकी भक्ति नहीं की, उनकी भजन में मैंने बाधा दी है, इसलिए यदि गोकुल में हमारा यदि पत्थर भी बन करके आऊं तो मुझे मंजूर है। किस लिए, गोपियों की बात नहीं, उन गोपियों के घरों में जो मैला टट्टी कमाने वाली जमादारनी है, जमादारनी समझ रहे हैं ना, जिसको मेहतर कहते हैं, वो भी मैला कमा करके आएंगी और अपने पैरों को हमारे ऊपर में रगड़ेंगी पानी दे करके साफ करने के लिए, उसमें हमारा जीवन कृतार्थ हो जाए। जहां कहीं भी हमारा जन्म हो भक्तों के यहां हमारा जन्म, यदि कुत्ता हो तो नहीं, मुझे ब्रह्म जन्म की लालसा है, ब्रह्म होकर के क्या करूंगा, ये ब्रह्म दिन रात तो कामों में संसार में लगा हुआ हूं, इसलिए मैं ब्रज में कहीं भी जन्म लेना चाहता हूं। मैं गोपियों की चरणों की मैं पुनः पुनः वंदना करता हूं, कृष्ण उनके हाथ के खिलौने बन गए हैं, जैसा चाहती हैं उसे, इतने पर छाछ पर कृष्ण को नचा देती हैं या कृष्ण नाचते हैं, बलदेव को नचा देती हैं, ऐसे गोपियों के चरणों की धूलि ही हमारे लिए सर्वस्व है। मैं ब्रज में कहीं भी जन्म लेना चाहता हूँ, यदि ब्रज में जन्म न हो तो कहीं भी हमारा जन्म हो जाए और भक्तों के घर में कुत्ते होकर के भी, कीड़े बन करके भी हमारा जीवन सार्थक हो जाए, ये भक्ति है। इसलिए हम लोग सहज रूप में महाप्रभु जी ने जो ये दिया है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, इसको कृष्ण का शाब्दिक अवतार समझेंगे। इसको कहते हैं शब्द ब्रह्म। किसी का नाम जैसे कि घंटू मंटू टंटू झंटू इत्यादि कर दिया, इनसे कुछ नहीं होने का। अरे भाई, उन लड़कों लड़कियों का नाम भी यदि भूल से भी यदि कृष्ण माधव गोविंद राम निष्ठ इत्यादि जब नाम रखा तो आप लोगों को साजी में मुक्ति हो जाएगी उनमें। इतनी मैं यहाँ पर देख रहा था, आ रहा था तो देखा एक जगह रामदा लिखा हुआ है। मैंने वाह, ये तो बहुत सुंदर चीज है। यदि कोई हराम का करके बैकुंठ में जा सकता है तो रामदा, राम को देने वाली जो भक्ति, यदि इसका राम का स्मरण कर ले, इसको लिख दे तो उस बेचारे का भी उद्धार हो गया। तो यदि प्रेम के साथ में भगवान का भजन करेगा, आरती उतारेगा, उनका नाम करेगा, हरे नाम हरे नाम हरे नाम, वही कलौ नास्ते हो कहते, इस चीज को याद रखे। सरल सरल, एक पैसा भी खर्च नहीं होगा, प्रणामी भी नहीं देनी पड़ेगी। दिन में रात में चलते फिरते उठते बैठते छींकते फिसलते हुए भी यदि राम निकल गया कृष्ण निकल गया तभी हमारा कल्याण हो, इस चीज को जरूर। और फिर दूसरा जन्म ना होने पाए, इसी जन्म में ठीक कर लो। जरा मांस मदिरा और इत्यादि से जरा हिंसा से बचो, किसी भी वैष्णव की निंदा मत करो। कोई भी वैष्णव आए उसको प्राण दे करके भी उसकी सेवा करो, उसके वचनामृत को ग्रहण करो, अवश्य ही कल्याण होगा। साधु संग सर्वसा, हरे नाम और इन सब जितने प्रकार के नाम है इसमें हरे नाम महामंत्र जो है सर्वश्रेष्ठ है। महाप्रभु ने उपनिषदों से इसे लिया है, इसलिए ये कलि संतरण उपनिषद का ये है, महाप्रभु ने जगत में प्रचार किया। इसमें सारी शक्तियां हैं, जैसे करो नामाभास भी करो तो अभी तर जाओ, किंतु याद रखो यदि कहीं वैष्णव अपराध भगवत अपराध नामापराध हो गया तो ये बड़ा भारी कठिन है। तब ये पत्थर के कलेजे में, पत्थर के हृदय में ये बीज नहीं होगा, भक्ति नहीं होने देगा। इससे बच रह करके और भगवान का नाम करो, भगवान का पूजन करो, उनका स्मरण करो, इसी से कल्याण है। मैं यही कह करके अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। श्री राधा रमण की जय, जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा।